दिन भर 28 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ मुहिम।
मैं जानता हूं कि हर लोग यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी कर रहे हैं तो उसको देख करके कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। बहुत दिनों से इस पर मंथन चल रहा था।
बात करेंगे मानुषी पत्रिका के संपादक मधु किश्वर से बलात्कार विरोधी कानून से जुड़े विवादों पर।
आपने कहा मिनिमम 7 साल की सजा देनी है, चाहे वो फोर्स्ड किस हो या क्लोज एम्ब्रेस, किसी को टाइटली किया या उसके किसी प्राइवेट पार्ट को छुआ। इतने बेवकूफ किस्म के केसेस आ रहे हैं।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अपने नाम की, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारत प्रशासित कश्मीर की पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा बलों की ताजा झड़प में कम 2 लोगों की मौत हुई है। बड़गाम जिले में चरमपंथियों के छिपे होने की खबर पर सुरक्षा बलों ने एक मकान की घेरेबंदी कर दी। इसी दौरान वहां गोलीबारी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक वहां हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए और सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमला करने के साथ ही भारत विरोधी नारे लगने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी गैर लाइसेंसी बूचड़खानों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में कार्रवाई शुरू होने के बाद किया जा रहा है। फ्रांस की एक अदालत ने फलस्तीन समर्थक कम्युनिस्ट चरमपंथी कार्लोस द जैकल को एक बार और उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस बार कार्लोस को 1974 में एक बम धमाका कर 2 लोगों की जान लेने और 30 से ज्यादा लोगों को घायल करने के आरोप में सजा दी गई है। कार्लोस पहले से ही 2 बार उम्र कैद की सजा पा चुके हैं और वो फिलहाल फ्रांस की जेल में बंद हैं। ये अपराध उन्होंने 70 और 80 के दशक में किए। कार्लोस का असल नाम इल्लिच रमिरेज है और एक समय वो दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल भगोड़ा माने जाते थे, जिसकी तलाश कई देशों की पुलिस कर रही थी। 1994 में सूडान की राजधानी खार्तूम में फ्रांस की पुलिस ने कार्लोस को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के प्रमुख ने इराकी सेना और अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना से अमरीकी पश्चिमी मूसल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी रणनीति की तुरंत समीक्षा करने को कहा है। जेजराद अल हुसैन ने इस्लामिक स्टेट और गठबंधन सेना के हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की निंदा की। इस साल फरवरी से अब तक कम से कम 300 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि आईएस से लड़ रही गठबंधन सेना को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आम लोगों की मौत कम से कम हो। उन्होंने आम लोगों को कवच बनाकर भागने की कोशिश कर रहे आईएस के लोगों की भी निंदा की। इधर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले ने कहा, एक के बाद एक कई गवाहों ने हमें बताया है कि इस्लामिक स्टेट ने उन्हें घरों में बंद रहने पर विवश किया, यहां तक कि उन्हें कमरों में बंद कर दिया गया और छतों के ऊपर लड़ाकों को तैनात कर दिया गया जहां से वे इराकी सेना पर हमला कर रहे हैं। कई लोगों ने यह भी बताया है कि आईएस के लड़ाके अपने साथ आम लोगों को भी कवच के रूप में साथ लेकर चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता रूपर्ट कोलविले के शब्द। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि सेना के हेलीकॉप्टर और जहाज़ों को उत्तर क्वींसलैंड में फंसे लोगों की मदद के लिए भेजा जा रहा है। यहां डेबी चक्रवात के कारण 10,000 लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। चक्रवात के कारण एयरली बीच के पास रहने वाले लोगों पर काफ़ी बुरा असर हुआ है। चक्रवात के कारण यहाँ तेज़ हवाएँ चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने संसद में कहा, हमें बताया गया है कि चक्रवात बोविन और प्रोसरपाइन के बीच पहुंच गया है। ये कैटेगरी 4 का चक्रवात है जिसमें हवाएं करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं कि हालात बहुत तेजी से खराब हुए हैं। संघीय और क्वींसलैंड की राज्य सरकारों ने चक्रवात से निपटने के लिए अच्छी तैयारी की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल के शब्द। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें अब तक एक व्यक्ति के मौत की जानकारी है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है और कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। दक्षिण पूर्वी चीन के शहर चोंगकिंग के नए नियम लागू किए गए हैं जिसमें उन लोगों पर तुरंत सजा दी जाएगी जो चीन में प्रतिबंधित वेबसाइटों पर जा रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड की सरकार भी अवैध पूछड़खानों को बंद करा रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के बाद झारखंड के गृह सचिव ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी गैर लाइसेंसी बूचड़खानों को गुरुवार की शाम तक बंद करा दिया जाएगा। सरकार को इस निर्णय के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
यह ऑडियो गौ क्रांति दल के सम्मेलनों में अक्सर बजाया जाता है। आरएसएस और दूसरे हिंदूवादी संगठनों के लोग बहुत पहले से बीफ के व्यापार पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। रांची में पिछले 24 मार्च को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस ने राज्य के अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की मांग की थी। इसके महज 3 दिन बाद झारखंड की भाजपा सरकार ने इस संबंधित आदेश दे दिया। राज्य के गृह सचिव SKG रहाटे के दस्तखत से कल देर शाम जारी आदेश में सरकार ने राज्य के सभी अवैध बूचड़खानों को 72 घंटे के अंदर बंद कराने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री CP सिंह ने बताया कि सरकार इस पर लंबे समय से विचार कर रही थी। उन्होंने कहा,
मैं जानता हूं कि हर लोग यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री यूपी कर रहे हैं तो उसको देख करके कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। बहुत दिनों से इस पर मंथन चल रहा था और उसी मंथन का ये शुरुआत हम लोगों ने बहुत गहन विचार विमर्श करने के बाद इसको किया।
सरकार को अपने इस आदेश के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अंजुमन इस्लामिया ने इस निर्णय की यह कहकर आलोचना की है कि रांची में एक भी लाइसेंसी बूचड़खाना नहीं है। सरकार ने पहले कभी लाइसेंस देने के लिए कोई अभियान ही नहीं चलाया। ऐसे में अधिकतर बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष इब्रार अहमद ने BBC से कहा कि इस फैसले का वक्त भी सही नहीं है। उन्होंने कहा,
ये जो फैसला आया है सरकार का
जी,
इसका टाइमिंग सही नहीं है। अभी हम लोगों के यहाँ 29-30 तारीख को सरहुल का त्यौहार है और फिर 5 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा और इस मौके पे प्रशासन, पुलिस और अमन पसंद लोग जो है काफी जो है बिजी हो जाते हैं। अब पुलिस प्रशासन जो है ये रामनवमी और इसकी तैयारी करे सरहुल की, या फिर जो है अवैध जो है बूचड़खाने जो है उस पे छापामारी करे, ये बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। तो वैध स्लॉटर हाउस कोई है ही नहीं है, तो सरकार को खुद ही जो है ये साफ छुपते भी नहीं सामने आते हैं वाली भी जो बात जो है ये नहीं करके जो है बहुत क्लियर कट इनको बात करनी चाहिए। अगर ये चाह रहे है कि इस तरह का जो है जैसे खास तौर से जो है गौवंश का जो है वध जो है रुकना चाहिए, ये बात जब की जा रही है तो सरकार को बिल्कुल साफ ढंग से इस पे आना चाहिए और ना केवल झारखंड में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो है आपका जो है ये रुकना चाहिए गौवंश।
झारखंड में कोई भी अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं कि राज्य बनने के बाद कितने बूचड़खानों को लाइसेंस निर्गत किए गए, अगर नहीं किए गए तो इसके कारण क्या है। बहरहाल प्रशासनिक अमला सरकार के इस आदेश पर अमल करने की कवायद में जुट गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची के कसाई मोहल्ले में सन्नाटा है। लोग कुछ भी कहने से डर रहे हैं। यह खामोशी सरकार को मुश्किल में भी डाल सकती है। रवि प्रकाश, BBC रांची।
उत्तराखंड के हरिद्वार में भी स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र की रेंज में आने वाली मीट की दुकानों को बंद कराने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में प्रशासन की एक टीम ने दुकानों पर छापा भी मारा है, जिससे इन दुकानदारों में अफरा तफरी देखी जा रही है। हरिद्वार नगर निगम के मेयर ने कहा है कि बगैर लाइसेंस के चल रही दुकानें बंद की जाएंगी और लाइसेंस वाली दुकानों की समीक्षा भी की जाएगी। इस फैसले से इन छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी का सवाल भी खड़ा हो गया है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बूचड़खानों को बंद करने के सरकार के ऐलान के बाद उत्तराखंड की BJP सरकार भी हरकत में आ गई है। यूं तो राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन अपने स्तर पर कार्रवाई का फैसला करते हुए नगर निगम ने अपनी परिधि में आने वाली मीट की दुकानों पर कार्रवाई करने को कहा है। हरिद्वार के मेयर मनोज गर्ग,
इसमें मैंने अपने नगर आयुक्त को, यहाँ के जिलाधिकारी को, यहाँ के पुलिस कप्तान को, मैंने उनसे कहा कि जिनके यहाँ पर लाइसेंस है और जो लोग दुकानें हैं और वो लोग मीट को बिल्कुल खुले में सड़क पर टांग कर रखते हैं उसको तत्काल बंद कराएं, ढककर रखें उसको, और साथ ही साथ या वो जिनके पास लाइसेंस है वो मानक पूरे कर रहे हैं उस मीट को, जो डॉक्टरी उसकी हो रही है नहीं हो रही है, और जो अवैध कटान चल रहा है जहाँ पर उनके पास कोई इस तरह का वातावरण की बिल्कुल बस्ती के अंदर वो कटान करते हैं।
मेयर के मुताबिक उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी अवगत करा दिया है। हरिद्वार शहर के मुहाने पर बसे ज्वालापुर इलाके में बताया जाता है कि करीब 100 से 150 परिवार मीट की दुकानें चलाते हैं, जहां चिकन, मटन और भैंस का मांस काटा और बेचा जाता है, और उनमें से कईयों के पास लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन ये बड़े कारोबारी नहीं है। मेयर मनोज गर्ग कहते हैं,
काउंटिंग तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी है उसमें अधिकतर बिल्कुल अवैध रूप से काम कर रहे हैं, और इसलिए मैंने डीएम और कप्तान को दोनों को कहा है वो तत्काल बंद कराएं। कल इन्होंने रात कार्रवाई की है, आज मैं स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाकर उसको बोला है, वो मेरे को रिपोर्ट करेगा।
करीब 7-8 महीने पहले मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन दुकानों को बंद कराने की मांग की थी। 2004 में उत्तराखंड सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे धार्मिक मान्यताओं से जुड़े शहरों में शराब और मांसाहार आदि का व्यापार और इस्तेमाल वर्जित किया है। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में चुनिंदा मीट की दुकानों की तो शामत आ गई, क्या योगी सरकार के एंटी रोमियो दल का विवादास्पद ऐलान भी यहां अमल में आ सकता है? इस सवाल पर फिलहाल उत्सुकता और बेचैनी देखी जा रही है। शिव जोशी, BBC देहरादून।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31, 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,410, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ग्रेटर नोएडा में एक छात्र की मौत और उसके बाद कुछ अफ्रीकी छात्रों की पिटाई के बाद स्थानीय लोगों और अफ्रीकी छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत के बाद जहां स्थिति को नियंत्रित करने की बात कर रही है, वहीं मृतक छात्र के परिजनों के अलावा कई अफ्रीकी छात्रों में भी घटना को लेकर दहशत है। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र स्थिति को जानने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
ग्रेटर नोएडा के तमाम कॉलेजों में पढ़ने वाले अफ्रीकी छात्र यूं तो यहां अक्सर घूमते टहलते मिल जाते हैं, लेकिन मंगलवार को ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे। बताया गया कि सोमवार को कुछ नाइजीरियाई छात्रों को कथित तौर पर पीटने की घटना के बाद से ये लोग दहशत में हैं। शारदा विश्वविद्यालय के एक छात्र अली अब्दुल्लाही से हमारी मुलाकात विश्वविद्यालय कैंपस में हुई। उनका कहना था,
We are feeling very bad here, very impressed because everyone is caring.
अली अब्दुल्लाही कह रहे थे कि हम लोग यहाँ काफी डरे हुए हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, यहाँ तक कि जरूरी सामान खरीदने के लिए भी हम नहीं जा रहे हैं, डर है कि कहीं काला व्यक्ति समझकर लोग पीट न दें। दरअसल ग्रेटर नोएडा में 3 दिन पहले 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत के मामले में परिवार वालों ने 5 नाइजीरियाई छात्रों पर संदेह जताया था और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्र की मौत के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने सोमवार को कैंडल मार्च निकाला था, लेकिन उसी दौरान शहर के एक मॉल में कुछ अफ्रीकी छात्रों पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें कई नाइजीरियाई छात्रों को चोटें आईं। घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है। गौतम बुद्ध नगर जिले की SP सिटी सुजाता सिंह ने बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई अन्य की तलाश जारी है।
करीब 40-50 लोग ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने वीडियो में आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी धरपकड़ जारी है, बहुत जल्द हम और ज्यादा गिरफ्तारियां करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक मीटिंग भी बुलाया था, जिसमें कि नाइजीरियन एम्बेसी से 2 लोग आए हुए थे, हमारे यहाँ के लोकल लोग थे। इन सभी लोगों ने मिलकर जो अपने शेयर किए कि नाइजीरियंस को क्या दिक्कत है और यहाँ के लोकल लोगों को क्या दिक्कत है, यानी इट वाज अ वेरी कॉर्डियल मीटिंग।
नाइजीरियाई छात्रों से बातचीत के बाद उनकी शिकायत थी कि यहाँ के लोग उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते। वहीं स्थानीय लोग भी इन छात्रों से काफी खफा दिखे।
इनके साथ में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये लोगों के साथ में बदतमीजी बहुत ज्यादा करते हैं। ऑटो वाले का किराया नहीं देना, कई बार ऐसा होता है कहना सुनना होता है तो गलेवान पकड़ लेते हैं, कोई बात हो भी जाती है तो पुलिस जो है इन्हीं लोगों का पक्ष लेती है।
क्यों ऐसा,
पुलिस भगा देती है हम लोगों को,
क्यों ऐसा क्यों?
उनका ही बजाते हैं, हमारे नहीं बजाते हैं। पुलिस वाले कह देते साले झूठ बोलते हो, विदेशी लोगों को तुम सताने की कोशिश करते हो। कॉलेजों का जो सर्वे हुआ है इसमें लगभग 130 बच्चे गायब पाए गए हैं इस साल, और शक का दायरा इसी में जा रहा है कि इन लोगों ने उन बच्चों को उठा लिया है और उनको ड्रग्स वगैरह खिला के पिला के और उनके साथ में मतलब कुछ घटना घटी है।
सारे तो कुत्ते खत्म कर दिए।
हाँ जी
सारे तो कुत्ते खत्म कर दिए यहाँ के, सब काट काट के खा गए कुत्ते भी,
खा जाते
और क्या, सब कुत्ते खा गए, बिल्ली बंदर जो मिल गया सब साफ कर दिया उन्होंने।
दो तीन दिन पहले की घटना है, इन्होंने भी तो कई लोगों को पकड़ पकड़ के मारा बहुत ज्यादा। उसी विषय पे जो इन पे शक गया है कि एक लड़का इन्होंने पकड़ लिया था, उसको कई दिन ड्रग्स दिया।
यही नहीं, मृत छात्र के परिजनों का भी आरोप है कि पुलिस दबाव में आकर उनकी FIR पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरहाल मामला शांतिपूर्ण भले ही दिख रहा है, लेकिन दहशत में अफ्रीकी छात्र भी दिखे और मृत छात्र के परिजन भी। समीर आत्मज मिश्र, BBC, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। 2013 में कड़ा किए जाने के बाद से भारत के बलात्कार विरोधी कानून का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा मानना है मानुषी पत्रिका की संस्थापक और ICSSR में नेशनल प्रोफेसर मधु किश्वर का। किश्वर ने कानून के कई प्रावधान हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। उनके मुताबिक कानून की परिभाषाओं के चलते कई आदमी गलत मामलों में फंस रहे हैं और जब तक वो बरी होते हैं उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, खासतौर पर इस वजह से क्योंकि पीड़िता की तरह उसकी पहचान छिपाने का कोई प्रावधान नहीं है। पर कितने ठोस हैं ये आरोप, उनसे विशेष बातचीत की BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने।
2012 में जो दिसंबर में एक गैंग रेप की घटना हुई थी, के बाद रेप के कानून को कड़ा किया गया और उसके बाद अब एक जनहित याचिका एक PIL दायर की है मधु किश्वर जी ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो कानून कड़ा किया गया था इसमें से कुछ प्रावधान सही नहीं है और इससे कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है।
रेप की परिभाषा है, आप सुनिए ध्यान से, इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कुछ भी, तो इसका मतलब मैं कोई पुरुष किसी औरत को उसके कान में अपनी उंगली घुसाने को फोर्स करे वो भी रेप आ गया बाय दिस डेफिनेशन कानून।
पर ऐसा तो नहीं कोई केस हमारे सामने अभी तक आया कि किसी औरत ने इस तरह से गलत इस्तेमाल किया हो।
अगर फर्स्ट किस कैन आल्सो बी इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी,
मैं कान में उंगली डालने की बात नहीं, फर्स्ट किस तो सेक्सुअल है।
जब आप क्राइम की परिभाषा कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसमें इस तरह का आज नहीं आया, 5 साल बाद आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरह के रेप केसेस बार बार आ रहे हैं।
यहाँ पे बस क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि 2013 से पहले जो कानून था उसमें सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो फर्स्ट तरीके से किया गया है उसको रेप माना जाता था और पेनिट्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया था, जबकि इस कानून में पेनिट्रेशन में ओरल सेक्स को भी रखा गया है, डिजिटल रेप यानी कोई डंडा या किसी चीज को इंसर्ट करने को भी कहा गया है अलॉन्ग विद पीनो वेजाइनल पेनिट्रेशन।
देखिए अगर आप ये कहते हैं जैसे निर्भया कांड में हुआ, उन्होंने रॉड्स घुसाए उसके वजाइना में, वो वहशीपन की हद है और वो रेप में आना चाहिए। दूसरी जो इससे जुड़ी हुई बात है कि प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म कर दिया, आपने कहा मिनिमम 7 साल की सजा देनी है चाहे वो फोर्स्ड किस हो या क्लोज एम्ब्रेस किसी को टाइटली किया या उसके किसी प्राइवेट पार्ट को छुआ, इतने बेवकूफ किस्म के केसेस आ रहे हैं। दूसरी बात जो इससे जुड़ जाती है, मियर टेस्टिमनी ऑफ द वुमन अलेजिंग इज इनफ, यानी वो औरत कहे कि इसने मुझसे रेप किया है तो वो माना जाएगा कि उसने, क्योंकि कहा है, उसकी टेस्टिमनी को खुदा की आवाज समझ के आपको मानना पड़ेगा।
लेकिन ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो 2013 के अमेंडमेंट से पहले भी हमारे कानून में था और कई कोर्ट्स ने कहा था कि जो विक्टिम है उसकी टेस्टिमनी को ही ज्यादा तरजीह दी जाएगी क्योंकि कोई विटनेस नहीं होता इस तरह के क्राइम का।
हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अक्सर रेप के विक्टिम्स नहीं होते। दूसरी ओर आप देखिए बहुत से केस दिल्ली कमीशन ऑफ वेमेन के सर्वे में भी पाया गया 52% केस बिल्कुल झूठे हैं।
नहीं देखिए गलत केस फाइल हों और उनके पूरे ट्रायल के बाद ये पता चले कि व्यक्ति बेकसूर था, ऐसा तो सिर्फ बलात्कार के मामलों में नहीं कानून कई कानूनों में होता है।
दूसरी बात देखिए किसी ने अगर फोर्स सेक्स किया तो आपको कम से कम सीमन का या कुछ मेडिकल प्रूफ मिल सकता है रेप हुआ कि नहीं। अभी आपने फोर्स्ड किस की या मेरे बॉडी पार्ट को टच किया या ये किया, इसका कोई मेडिकल कोराबोरेशन भी नहीं चाहिए, आपके बॉडी पे कोई प्रूफ भी नहीं होना चाहिए कि कोई खरोच आई या कुछ आई या कुछ भी किस्म से मेडिकली आप प्रूव नहीं कर सकते।
तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी 2013 में जब अमेंडमेंट्स हुई लॉ में, उन्होंने यही कहा था कि ये जो मेडिकल प्रूफ की बात है उससे ज़्यादा अहमियत कंसेंट रखता है कि औरत ने कंसेंट दिया था कि नहीं, तो उसको अहमियत दी जाए और मेडिकल प्रूफ को बलात्कार मानने के लिए अहमियत ना दी जाए, जिस आधार पर ये सुझाव दिया था कि कंसेंट एकदम अनइक्विवोकल होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, वो इसी तर्ज पर उन्होंने कहा था कि हमेशा औरत पे ये बर्डन रहा जाता है कि उसने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, उसके ऊपर कोई खरोंच के निशान थे कि नहीं, इसीलिए उसकी बात को हम ज्यादा तरजीह दें
और अनइक्विवोकल कंसेंट। इतनी तरजीह तो क्या करे पुरुष, अब क्या वो सीसीटीवी कैमरा लगा के रखेगा कि पहले वो वकालतनामा साइन कराएगा, क्या कराएगा? आप कंसेंट कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि उसने दी है कि नहीं?
मधुकेश्वर से बात कर रही थी दिव्या आर्य। मधुकेश्वर की जनहित याचिका पर अदालत ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के कई इलाकों में मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का समय बच्चों के लिए जैसे मौत का सबब बनकर आता है। इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार नाम की इस अजीबोगरीब बीमारी से अब तक हजारों बच्चे काल कवलित हो चुके हैं और डॉक्टर अभी तक इसका सही इलाज तक नहीं ढूंढ पाए हैं। जानकारों का कहना है कि इस बीमारी की रोकथाम ही इससे बचने का एकमात्र उपाय है, लेकिन आज तक योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय तक नहीं किए गए हैं। अब जबकि इस बीमारी के केंद्र गोरखपुर से ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। सुनिए गोरखपुर से समीर आत्मज मिश्र की ये खास रिपोर्ट जो उन्होंने कुछ दिन पहले भेजी थी।
वह तेज बुखार हो खे, फिर उतर जाए, फिर हो खे सर पीरा, और बाद हमने हर उहर दिखावल गई, फिर मेडिकल रेफर कर देना, वहाँ ले गए कुछ बेर ले झटकन झटकत 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 15 दिन होश नहीं रहा, और बाद मर गई ना।
हैदरगंज गांव की सुधा देवी 3 साल पहले हुई अपने बेटे सनी की मौत को याद करके फूट फूट
बहुत
कर
लोग रहना, एक एक बेटे पर तीन तीन लड़के चर चर लड़के बेड नहीं खाली रहा उस समय, हमारे बेड पर भी 3 लड़के रहना बगल आगल में, बकिल को बच्चे बचना नहीं।
9 साल का सनी भी उसी इंसेफेलाइटिस नामक बीमारी का शिकार हो गया था जिसने करीब 4 दशक से इस इलाके में कहर ढा रखा है। हैदरगंज यूं तो गांव है लेकिन गोरखपुर शहर से इसकी दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है। पूर्वांचल के कई जिलों में मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इस बीमारी का प्रकोप रहता है और हर साल सैकड़ों बच्चों की इससे मौत हो जाती है या फिर इसकी चपेट में आकर तमाम बच्चे विकलांग हो जाते हैं। इस बीमारी के उन्मूलन और इससे बचाव के लिए काफी दिनों से सक्रिय गोरखपुर के डॉक्टर आरएन सिंह कहते हैं,
मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हुई मौतें हैं सिर्फ उनके रिकॉर्ड मिलते हैं। इसी गोरखपुर शहर में कम से कम 5 बड़े-बड़े अस्पताल 300-200 बेड के हैं और इसी तरह से कम 200 नर्सिंग होम्स हैं। तो अगर सारी मौतों को आप लेंगे तो ये 500-600 सीधे जो है 1000-1200 खाली गोरखपुर में हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर 12-13 जिले अगर जो हमारे हैं तो अगर सबके आंकड़ों को देखें तो मेरा अनुमान जो है ये अतिशयोक्त नहीं है, कम से कम प्रतिवर्ष केवल पूर्वांचल में 5000 मौतें हो जाती।
बुखार के रूप में शुरू होने वाली इस बीमारी के विषाणुओं का मुख्य वाहक मच्छरों को माना जाता है और डॉक्टरों के मुताबिक अब तक इसका कारगर इलाज संभव नहीं हो पाया है, सिर्फ बचाव और रोकथाम ही एकमात्र रास्ता है। डॉक्टर आरएन सिंह कहते हैं कि इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की जरूरत है जो बनाया भी गया था लेकिन आज तक सही तरीके से लागू नहीं हो पाया।
इसमें नेशनल प्रोग्राम जो काम करेगा उस प्रोग्राम 2012 में बना था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर द्वारा जो तत्कालीन सरकार केंद्र सरकार ने बनाया था लेकिन वो अब जो भी वजह हो लागू नहीं हो पाया। फिर 2014 में भी बना लेकिन वो बंद करके अभी भी जमीनी स्तर पे जो है लैंड डाउन नहीं कर पाया है, वो दिल्ली में ही दिल्ली से ही टेकअप नहीं किया है।
गांव में जागरूकता के तमाम संदेश दीवारों पर लिखे हुए हैं। साफ सफाई के लिए ये संदेश सरकारी विभागों की ओर से जारी किए जाते हैं। लोगों से खुद सफाई रखने की अपील की जाती है और सरकारी स्तर पर दवाइयाँ छिड़काई जाती हैं लेकिन साफ सफाई की स्थिति पूरे इलाके में काफी दयनीय है। हैदरगंज के लोग कहते हैं,
10-12 साल से इधर कभी छिड़काव नहीं हुआ किसी भी दवा का, कोई मदद नहीं है। सर सफाई की व्यवस्था लोग अपने आप ही करते हैं, अपने दरवाजे का, अपने नाली का
साफ सफाई जितना पार लगता है उतना तो हम लोग करवा करते हैं, मतलब झाड़ू उड़ू कभी कदार मार देते हैं हम लोग।
कभी आप लोग शिकायत भी नहीं करते?
शिकायत किससे किया जाए, जो ग्राम प्रधान है उनसे अगर शिकायत किया जाए तो कभी कदार अगर एक आध बेर भेज देते हैं, नहीं तो वो भी नहीं भेजते हैं। स्वास्थ्य केंद्र है तो वो भी जो है ध्यान नहीं देता है।
गाँव वालों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलने के बावजूद करीब 4,000 की उनकी आबादी में एक भी शौचालय सरकारी स्तर पर नहीं बना है। कुछ लोगों ने खुद ही बनवाए हैं और बाकी खुले में शौच जाते हैं। यही नहीं, बच्चों के बीमार होने पर भी लोग इधर उधर भटकते हैं, जबकि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी के लिए खास तौर पर व्यवस्था रहती है। गोरखपुर के सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र श्रीवास्तव पिछले कई सालों से इस बीमारी को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
जानकारी का अभाव, जैसे बुखार हुआ तो पहले आसपास के गांव है तो आसपास में ही लोग लेके जा रहे हैं और वो जो दवा दे रहे हैं उसके बाद फिर मतलब जब केस बिगड़ जा रहा है, ज्यादा दिक्कत हो जा रही है, फिर वो मतलब बोल रहे हैं कि मतलब ले जाइए मेडिकल कॉलेज।
गर्मी की शुरुआत होते ही इंसेफेलाइटिस का कहर इलाके में शुरू हो जाता है। गोरखपुर से सांसद रहे और अब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को कई बार संसद में भी उठा चुके हैं। अब यहाँ के लोगों की उम्मीद और बढ़ गई है कि शायद इसके खात्मे के लिए कोई नई और गंभीर पहल हो।
भाषण में तो देना है, अब कहना तब न देखल जा, कुछ कहना हमन के लिए सुविधा तब न जानल जा।
समीर आत्मज मिश्र, BBC गोरखपुर।
भारत ने धर्मशाला टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। हमारे साथी वैभव दीवान ने बात की क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली से।
भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच जो धर्मशाला में खेला गया, भारत ने जीता 8 विकेट से और नाम कर ली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने 2-1 से। इस मैच को देखने पहुंचे विजय लोकपल्ली सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, कैसे आंकेंगे इस जीत को आप भारत की?
मेरे ख्याल से ये जीत एक बहुत अहम जीत मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एक युवा टीम नए कप्तान के अंडर में खेल रही थी, डिसाइसिव टेस्ट था, 13 टेस्ट मैच का जो होम सीजन था उसमें बहुत अहम था ये, क्योंकि आप बांग्लादेश से जीते, इंग्लैंड से जीते, न्यूजीलैंड से जीते, कहीं आप ये मैच हार जाते, मैं कहूंगा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहता विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के लिए। विराट कोहली नहीं खेले, जैसे मैंने कहा अजिंक्य रहाणे अपना पहला टेस्ट मैच उन्होंने कप्तानी के तौर पर निभाया और बहुत बेहतरीन उन्होंने जो है कप्तानी करी इस मैच में, तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत अहम जीत और खास करके इसलिए क्योंकि इस जीत से आप इंडिया जो है वर्ल्ड में टेस्ट टीम, आप नंबर 1 की टेस्ट टीम बन गए हैं। दूसरा ये कि आपको, आपने दिखा दिया कि जरूरी नहीं आपको स्पिनर फ्रेंडली पिचेस चाहिए मैच जीतने के लिए।
पूरी सीरीज को अगर आप एनालाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे इस पूरी सीरीज का, पहले टेस्ट मैच से लेकर धर्मशाला टेस्ट मैच, इसको कैसे आप बयां करेंगे?
आपकी शुरुआत बहुत खराब रही, आप पुणे में टेस्ट मैच हारे, लेकिन जिस ढंग से आपने वापसी की बेंगलोर में और रांची में ड्रॉ हो गया, मैं कहूंगा वो टेस्ट मैच भारत को जीतना चाहिए था। और यहाँ पे भी अगर आप देखें केवल 32 रन की पहले इनिंग्स की लीड थी और जिस ढंग से उमेश यादव, अश्विन और रविंद्र जडेजा ने जो बॉल डाला है तीसरे दिन, मतलब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम सुबह फील्डिंग करने आई और फिर शाम को फिर दोबारा फील्डिंग करने आ गई। आपके पास साधन थे, स्पिनर्स थे, फास्ट बॉलर्स थे और इस सीरीज में एक ये दिखा दिया है कि कुंबले की कोचिंग में जो 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 उन्होंने शुरुआत में कही थी कि वो हर प्लेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर प्लेयर ने निभाया है, तो पुणे से लेके धर्मशाला तक जो 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 जर्नी थी भारत की टेस्ट जर्नी, इसमें सबसे बढ़िया चीज ये उभर के आई है कि आपके पास कुछ नए खिलाड़ी आपको मिले हैं जिनमें आप भरोसा रख सकते हैं कम से कम अगले 5 साल के लिए।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली जो आज धर्मशाला में मौजूद थे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच खत्म हुआ। मैच में मैन ऑफ द मैच रहे रविंद्र जडेजा, न केवल मैन ऑफ द मैच बल्कि वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने। खेल समाचारों में इतना ही
और चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर की पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों से सुरक्षा बलों की ताजा झड़प में कम 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फ्रांस की एक अदालत ने फलस्तीन समर्थक कम्युनिस्ट चरमपंथी कार्लोस द जैकल को एक बार और उम्र कैद की सजा सुनाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के प्रमुख ने इराकी सेना और अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना से पश्चिमी मूसल में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी रणनीति की तुरंत समीक्षा करने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया कि सेना के हेलीकॉप्टर और जहाजों को उत्तर की ओर क्वींसलैंड में फंसे लोगों की मदद के लिए भेजा जा रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की तिलक राज भाटिया ने, रिहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।